पृष्ठ संख्या 241, सीमापवर्ती सन खाननिंग जापान विरोधी आंदोलन के साथ साथ साम्यवादी आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र बन गया, क्योंकि साम्यवादियों ने चियांगसी की संगठनात्मक संरचना का ढांचा यहां भी खड़ा कर लिया था। इस समय सन खाननिंग चीन का एकमात्र क्षेत्र था जहां साम्यवादियों की सोवियत प्रणाली कार्य कर रही थी, तथा वहां जमींदारों और धनी किसानों की जमीन जब्त करके गरीब किसानों के बीच वितरित की जा चुकी थी। 1935 ईस्वी में लागू किए गए तथा 1936 ईस्वी में उदारता के विकसित किए गए ग्रामीण सुधारों ने सामान्य ग्रामीण जनता का विश्वास जीता और उनकी राजनीतिक तथा सैन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका का मार्ग प्रशस्त किया। इसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन में ऐसे बदलाव आए जो एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त थे। कुओमिंतांग की सेनाओं के दमनकारी व्यवहार ने भी किसानों को साम्यवादी क्रांति की ओर आकर्षित किया। इस क्रांति में किसानों को कुओमिंतांग की सेनाओं और समाहर्ताओं के अत्याचार से मुक्ति का मार्ग नजर आया। शानसी के साम्यवादी आंदोलन की तुलना चियांगसी तथा एन आन के आंदोलनों से करते हुए प्रायः हर पर्यवेक्षक ने शानसी के आंदोलन में गरीब युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। आरंभिक दौर में वास्तविक सहयोग के द्वारा सफलताएं पाने के बावजूद 1938 ईस्वी तक आते आते संयुक्त मोर्चा साम्यवादियों और कुओमिंतांग के आपसी संघर्ष और मतभेदों का शिकार हो गया। 1937 ईस्वी के उत्तरार्ध में कुओमिंतांग की सेना को हराते हुए जापानी सेना के पीछे, जहां से जापानी सेना आगे निकल जाती थी, साम्यवादियों द्वारा बनाई गई सरकारों की अप्रत्याशित सफलता कुओमिंतांग और साम्यवादियों के बीच बढ़ती कटुता का बहुत बड़ा कारण थी। 1938 ईस्वी में जापानियों ने हानखोउ को जीत लिया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवादियों को तटीय प्रदेशों से भागकर सुदूर पश्चिम में स्थित सिचुआन प्रदेश में शरण लेनी पड़ी। एक तरफ जहां कुओमिंतांग की सेनाएं लगातार हार रही थी और पीछे हटती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर साम्यवादी छापामार युद्ध पद्धति के सहारे उत्तरी चीन में न केवल जापानियों को कड़ी चुनौती दे रहे थे, बल्कि अपने नियंत्रण क्षेत्र को भी लगातार बढ़ाए जा रहे थे। 1938 ईस्वी में कुओमिंतांग और सीसीपी के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ, 1939 ईस्वी के प्रारंभिक दिनों से भी उसने भीषण युद्ध का रूप लेना शुरू कर दिया। नवंबर 1938 ईस्वी में एन आन ने अपने छठे अधिवेशन में सीसीपी ने यह तय किया कि संयुक्त मोर्चा में सहयोग और संघर्ष साथ साथ चलते रहने चाहिए। यह भी तय किया गया कि यह बात ठीक नहीं थी कि सब कुछ संयुक्त मोर्चे के माध्यम से हो, एवरीथिंग थ्रू द यूनाइटेड फ्रंट, क्योंकि यह चीन की वास्तविक स्थितियों के अनुरूप नहीं था। इस अधिवेशन में संयुक्त मोर्चे की समझौतावादी नीति की भी आलोचना की गई और इसके लिए माओ के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी वांग मिंग को दोषी ठहराया गया, जिसकी स्थिति इस अधिवेशन के बाद लगातार कमजोर होती चली गई। इसके पश्चात उत्तरी चीन में सीसीपी के निरंतर मजबूत होते स्थिति और कुओमिंतांग के साथ संघर्ष में वृद्धि के कारण संयुक्त मोर्चे के प्रति सीसीपी का रवैया कठोर होता चला गया। दूसरी ओर जनवरी 1939 ईस्वी में कुओमिंतांग की पांचवी केंद्रीय कार्यकारी समिति सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में विरोधी दलों की गतिविधियों को रोकने के उपाय तय किए गए जो उस घटना की शुरुआत को इंगित करते थे, जिसे साम्यवादियों ने प्रथम साम्यवाद विरोधी लहर माना। इन उपायों के अनुरूप कुओमिंतांग के क्षेत्रों में साम्यवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाई गई। दिसंबर 1939 ईस्वी में सन खाननिंग क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी गई और फिर कई भीषण लड़ाइयाँ हुई। भीषण युद्धों के परिणाम स्वरूप जब सहयोग की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई, तो साम्यवादियों ने तीन तिहाई व्यवस्था 3/3 सिस्टम नामक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जो संयुक्त मोर्चे में उनकी आस्था को इंगित करता था। इस व्यवस्था के अनुसार साम्यवादियों ने अपने क्षेत्रों में औपचारिक रूप से यह निर्णय लिया कि वे केवल एक तिहाई सरकारी और समिति के पदों पर रहेंगे। उनके तीन प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, समान शत्रु कॉमन इकोनॉमी, जापान के विरुद्ध युद्ध में विभिन्न वर्गों और दलों के साथ सहयोग की नीति में विश्वास, छापामार युद्ध में गैर साम्यवादियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके नेताओं के साथ राजनीतिक शक्ति की भागीदारी के प्रति वचनबद्धता तथा तीसरा, जापान और कुओमिंतांग की आक्रामक सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष। सन खानिंग तथा अन्य साम्यवादी क्षेत्रों में तीन तिहाई व्यवस्था से प्रशासन को तो सशक्त बनाया ही, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के कारण सीसीपी के दावे को भी वैधता प्रदान की गई। हालांकि कागज पर तो कुओमिंतांग की नीतियां भी साम्यवादियों जैसी ही थी, पर उनके पास किसानों को देने के लिए अनाज की चोरी, यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए सेनाओं में युवकों की जबरदस्ती भर्ती तथा कोड़े शब्दों और नारों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। कुओमिंतांग ने शांति पर अपने एकाधिकार को बनाए रखते हुए साम्यवादियों और गैर साम्यवादियों तथा गैर कुओमिंतांग राजनीतिक गुटों को काफ़ी सीमित शक्तियाँ प्रदान की। 1944 ईस्वी के अंतिम चरण में जहाँ जापानी सेनाएं हारती जा रही थी, वहीं साम्यवादियों की स्थिति मजबूत होती जा रही थी। साम्यवादी सेना में सैनिकों की संख्या करीब 9,10,000 हो गई तथा साम्यवादी सेना की सहायक ग्रामीण अर्धसेना की संख्या 22 लाख से अधिक हो गई। सीसीपी के प्रभाव वाले 19 सोवियतों में 9,55,00,000 लोग रहते थे। सीसीपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 12,10,000 हो गई। सीसीपी के प्रभाव में यह अभूतपूर्व वृद्धि संयुक्त मोर्चे संबंधी उसकी नीति तथा उस दौरान उसके कार्यक्रमों का परिणाम थी। सीसीपी के सिद्धांत प्रवर्तक माओ तैतुंग ने संयुक्त मोर्चे की विचारधारा को मार्क्सवाद के सिद्धांत के स्तर तक उठाया। उन्होंने संयुक्त मोर्चे को अस्थायी संस्थागत स्वरूप देने का भी प्रयास किया। माओ ने ये बातें अपने दो महत्वपूर्ण लेखों द्वारा कही। उनमें पहला लेख था सीसीपी के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन को राजनीतिक रिपोर्ट, पॉलिटिकल रिपोर्ट टू द 7th नेशनल कांग्रेस, 30 जून 1949 ईस्वी को प्रकाशित विख्यात लेख जनता के प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद पर, ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, माओ का दूसरा लेख था। माओ ने अपने इस आलेख में यह स्पष्ट किया कि संयुक्त मोर्चा उन तीन प्रमुख हथियारों में एक है जिनके द्वारा हमने दुश्मन को पराजित किया है। यूनाइटेड फ्रंट इज वन ऑफ द थ्री मेन वेपन्स विथ विच वी हैव डिफीटेड द इनेमी। माओ का नया प्रजातंत्र, न्यू डेमोक्रेसी, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता के बहुत बड़े वर्ग के बीच में प्रजातंत्रिक गठबंधन की कल्पना पर आधारित था। माओ ने यह भी कहा कि चीन में समाजवाद की स्थापना से पहले बुर्जुआ प्रजातंत्रिक आंदोलन, बुर्जियस डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन की आवश्यकता थी। 1945 ईस्वी में जापान की हार और अक्टूबर 1949 ईस्वी में सीसीपी के सत्ता में आने के बीच सत्ता संघर्ष कई दौरों से गुजरा। सर्वप्रथम विचार विमर्श तथा जोर तोर की राजनीति चली जो 1946 ईस्वी की गर्मियों तक समाप्त हो गई। इसके बाद मई 1947 ईस्वी तक का दौर कुओमिंतांग द्वारा सैनिक कार्रवाई का दौर था। तीसरा दौर सीसीपी की सैनिक कार्रवाई का था जिसमें कुओमिंतांग की पराजय हुई। कृषक राष्ट्रवाद, पीजेंट नेशनलिज्म। सीसीपी का महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने चीन के कृषकों की शक्ति और संभावनाओं को पहचाना। हालांकि कई जाने माने साम्यवादी कृषकों को निष्क्रिय शक्ति मानते थे जो कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए देशों में अधिक से अधिक सहायक भूमिका ही निभा सकते थे, उसने कृषकों को शैतानिक शक्तियों से लड़ने और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार करने के लिए अथक परिश्रम किया। मजदूर आंदोलन की तुलना में कृषक आंदोलन की जड़ें चीन में काफ़ी मजबूत और ऐतिहासिक थी। चीन में कृषि की प्रमुखता का एक द्योतक यह था कि उसकी 80% जनता किसान थी। हालांकि शोषण के खिलाफ संघर्ष काफ़ी पहले से होते आ रहा था, पर कृषकों में इतनी जागरूकता नहीं आ पाई थी कि वे उस व्यवस्था का संश्लेषण कर पाते जिसके खिलाफ वे लड़ रहे थे, और न ही वे यह जानते थे कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। सीसीपी चीन के बुद्धिजीवी वर्ग सहित शहरों में अपने आंदोलन में व्यस्त रही और ग्रामीण इलाकों में वह प्रथम संयुक्त मोर्चे की विफलता के बाद ही पहुंच गई। इस दिशा में कुआंग चोउ के साम्यवादी नेता फंग फाए द्वारा किए गए काम ही एक अपवाद था जिसने हाई फंग और लूफंग जिलों में मालगुजारी में कमी तथा बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए कृषक आंदोलन आयोजित किए। 1924 ईस्वी में माओ तैतुंग ने हुनान में कृषकों के बारे में अपने विख्यात जांच शुरू की, परंतु सीसीपी के संघर्ष के तरीके में बदलाव, चियांगसी सोवियत का साम्यवादी अड्डा स्थापित होने के बाद स्पष्ट होता है कि इस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि चीन में क्रांति ग्रामीण इलाकों से शुरू होकर शहरों तक तो पहुंचेगी, न कि शहरों से गांवों में। सीसीपी एक कृषक दल होगा, न कि मजदूर दल, तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का आधार कृषक राष्ट्रवाद होगा। मास्को विचारधारा, जिसने राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग तथा मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे का प्रावधान किया था, से यह अलगाव माओ के कृषकों पर लिखे गए, विशेषकर उनके 1926 में लिखे गए हुनान के कृषक आंदोलन पर रिपोर्ट ऑन द पीजेंट मूवमेंट इन हुनान पर आधारित माना जाता है। इसे क्रांति का चीनी पथ भी कहा जाता है। एक मत यह है कि मास्को विचारधारा तथा चीनी पथ स्पष्ट तौर पर एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते तथा संयुक्त मोर्चे के उपरांत कृषकों की महत्ता का कारण संयुक्त मोर्चे के दौरान हुआ अनुभव ही था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार साम्यवादियों की सत्ता पाने में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के राजनैतिक नेतृत्व के सिद्धांत की अवहेलना करना था। इससे पहले केवल इसी वर्ग को पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और समाजवाद की स्थापना के लिए समर्थ वर्ग माना जाता था। हालांकि यह विचारधारा तथ्यों का अति सरलीकरण है। यह सत्य है कि 1927 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन, गुरुत्वाकर्षण, केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थिति हो गया था। 1927 से 1934 के दौरान चियांगसी, 1937 से 1945 के दौरान जापान विरोधी अड्डे और 1946 से 1949 के दौरान कुओमिंतांग के प्रभाव वाले शहरों का घेराव करने वाले पुराने तथा नए स्वतंत्र क्षेत्र। परंतु माओ के निर्देशन में कृषक आंदोलन तथा समाजवादी क्रांति के बीच स्थापित संबंध की व्याख्या एक संश्लिष्ट विषय है। चालमर्ज जॉनसन तथा वेरिंगटन मूअर जूनियर यह मानते हैं कि कृषक राष्ट्रवाद ने ही जापानियों को हराकर साम्यवादियों को सत्ता प्रदान की। वे तर्क देते हैं कि ग्रामीण क्रांति के आधार पर चियांगसी में उठाए गए उनके कदम सफल नहीं हो पाए। उन्हें सफलता तभी मिली जब वे जापान के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष के नेता बने। मुअर का मानना है कि जापानियों ने साम्यवादियों के लिए दो क्रांतिकारी कार्य किए थे, पहली पुराने विशिष्ट वर्ग की समाप्ति तथा दूसरी शोषित जनता के बीच एकता की स्थापना करना। जापान के आक्रमण तथा विजय के फलस्वरूप कुओमिंतांग के कर्मचारी तथा जमींदार कृषकों को अपने भाग्य पर छोड़कर भाग खड़े हुए। ऐसी स्थिति में जापान की दमनकारी नीतियों तथा उनके विनाशकारी उपायों के कृषकों को एकजुट हो जाने पर मजबूर कर दिया। मार्क सेल्डन, जॉन सेजनो तथा लुसियन बियंको जैसे विद्वान उपरोक्त विवेचना से पूरी तरह सहमत नहीं है। जापानी साम्राज्यवाद के महत्व को कम न आंकते हुए ये विद्वान कुछ ऐसे तत्वों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने साम्यवादियों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्हें जॉनसन तथा मुअर के महत्व नहीं दिया। तथा सेल्डन ने जोर देकर कहा है कि साम्यवादी सिर्फ युद्ध द्वारा पैदा स्थिति का फायदा उठाकर सत्ता में नहीं आए। उनकी सफलता का कारण यह था कि अन्य प्रतिस्पर्धी दलों से भिन्न सीसीपी ने पतनशील संस्थाओं के विकल्प तैयार किए तथा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में वातावरण तैयार किया कि जनता का स्वैच्छिक सहयोग उन्हें मिल सके। जॉन सेजनो का कहना है कि हालांकि जापानी आक्रमण के समय राजनीतिक नीति के तहत ग्रामीण क्रांति को स्थगित कर दिया गया था, उत्तरी चीन के किसानों के लिए सीसीपी गरीबों की पार्टी बनी रही जिसने एनआन तथा अन्य सीमांत क्षेत्रों में अपने नए सामाजिक मॉडल का प्रारूप लोगों को दिखाया था। बियंकोक भी जापानी आक्रमण का सिर्फ एक सहायक तत्व मानते हैं। उनकी राय में साम्यवादियों की विजय का मुख्य कारण यह था कि वह जापान की पार्टी थी जो जनता की समस्याओं को जानती और समझती थी। लगभग सभी विद्वान मानते हैं कि सीसीपी के जनता की पार्टी के रूप में विकास में बाह्यताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन बाह्यताओं के प्रभाव की व्यापकता को स्वीकार करते हुए बियंको कहते हैं कि आधुनिक चीन का इतिहास साम्राज्यवादी ताकतों के रूप में देखा जा सकता है जिनके कारण चीन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। जापान के विरुद्ध चीनी राष्ट्रवादियों का क्रोध पहली बार 1915 ईस्वी की 21 मांगों में परिलक्षित हुआ और 1930 ईस्वी में मंचूरिया पर जापानी कब्जे ने इस जापान विरोधी क्रोध को और भी व्यापक बना दिया। जापान ज्यों ज्यों चीन के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण कर उन्हें जीतता त्यों त्यों उनके विरुद्ध चीनियों का क्रोध भी बढ़ता गया। पर चियांग चियेसरा की कुओमिंतांग सरकार ने जापानियों का मुकाबला नहीं किया बल्कि अपनी प्रजा को निर्दयी जापानियों की दया पर छोड़ते हुए लगातार पीछे हटते चले गए। वास्तव में कुओमिंतांग में एक शक्तिशाली समूह जमींदार, उद्योगपति, व्यापारी आदि यह मानता था कि जापानियों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा खतरा वे साम्यवादी थे जो अपनी नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करके इस समूह की विशेष शक्तियों, सहूलियतों, रुतबों को समाप्त कर देना चाहते थे। पहले एकीकरण और फिर संघर्ष की कुओमिंतांग की इस नीति जिसके तहत वे पीछे हटते जा रहे थे का असर यह हुआ कि जनता का विश्वास लगातार कुओमिंतांग पर से हटकर सीसीपी पर बढ़ता जा रहा था जो कि आक्रमणकारी जापानियों के विरुद्ध जनता के संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु अथक परिश्रम कर रही थी। यहाँ पर चीन पर जापानी आक्रमण के प्रभाव की एक संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक है। चीनी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पूर्ण साम्राज्यवादी नियंत्रण हो चुका था। 1937 ईस्वी में चीनी रेलवे में 90.7% पूंजी विदेशी थी। चीन के कुल कोयला उत्पादन का 55.7%, यांगत्ज नदी में चलने वाले जहाजों का 18.9% तथा कुल विद्युत उत्पादन का 55% विदेशियों के हाथों में था। पूरा लौह उत्पादन जापानियों के हाथों में था। 1936 ईस्वी में चीन की कुल सूत काटने वाले तकलों का 46.2% तथा कुछ हथकरघों का 56.4% विदेशी पूंजी द्वारा संचालित और नियंत्रित था। विदेशी बैंक सीमा कर तथा नमक कर को नियंत्रित करने वाले बैंक नोट जारी कर सकते थे। साम्राज्यवादी ताकतों जो पूंजी चीन में लगाती थी वह प्राय चीन के शोषण से ही प्राप्त होती थी और पूरा मुनाफा साम्राज्यवादी ताकतें अपने देश ले जाती थी। यह उल्लेखनीय है कि 1930 ईस्वी के पश्चात जहां ब्रिटिश पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं बढ़ा और अमेरिकी निवेश 20% बढ़ा, वहीं 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच जापानी पूंजी निवेश में 48% की वृद्धि हुई। चीन में लगी हुई कुल विदेशी पूंजी में से आधी जापानी पूंजी थी। खासतौर पर उत्तर पूर्व में जापान ने बाजार, भूमि, कारखानों, औद्योगिक कच्चे माल, संचार तथा यातायात व्यवस्था सभी पर एकाधिकार नियंत्रित स्थापित कर लिया। चीन के तीन सबसे बड़े कपड़ा उत्पादन के केंद्र जापान के नियंत्रण में थे। जापान ने चीन पर पहला सैन्य आक्रमण 18 सितंबर 1931 ईस्वी को किया। जनवरी 1933 ईस्वी तक वे पूरे उत्तरी चीन में घुस चुके थे। 1935 ईस्वी तक उन्होंने भीतरी मंगोलिया पर कब्जा कर लिया तथा 1937 ईस्वी तक वे सर्वोच्च शक्ति बन गए। इसी समय पेचिंग के दक्षिण में स्थित मार्को पोलो पुल पर एक मामूली घटना को लेकर बिना युद्ध की घोषणा किए ही जापान ने पूरे चीन पर आक्रमण कर दिया। उनकी बर्बरता इस कदर थी कि नानचीन सरकार के गिरने के बाद उन्होंने 30,000 लोगों को कत्ल कर दिया। इसके बाद उन्होंने यांगतो क्षेत्र में शरणार्थियों पर मशीन गनों द्वारा गोलियां चलाई। चीन के अन्य भागों में इसी तरह जान और माल की बेहिसाब क्षति हुई। जापानियों के प्रति चीनियों के हृदय में डर और घृणा उपयुक्त कारणों का स्वाभाविक परिणाम थी। 1932 ईस्वी में कियांगसी सोवियतों ने मंचूरिया पर जापान के आक्रमण के जवाब में युद्ध का ऐलान कर दिया तथा जापान से लड़ने के लिए एक नए संयुक्त मोर्चे की स्थापना का आह्वान किया। बुद्धिजीवियों ने जापानी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए जनमत तैयार करना शुरू किया। विद्यार्थियों ने कई प्रदर्शन किए ताकि सरकार बातचीत और समझौते का रास्ता छोड़कर जापान के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करने पर मजबूर हो जाए। उत्तरी चीन में जापानी आक्रमण के फलस्वरूप विद्यार्थियों ने 1935 ईस्वी में एक बड़ा विद्रोह किया, जिसे अब 9 दिसंबर का आंदोलन, दिसंबर 9th मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन ने उत्तरी चीन के 5 प्रांतों को चीन की बाकी भागों से अलग करने की जापानी योजना को असफल करने में बड़ी भूमिका निभाई। मई 1936 ईस्वी में विद्यार्थियों के प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय मुक्ति हेतु संगठनों का अखिल चीनी संघ की स्थापना हुई, जो एक सशक्त राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठनात्मक केंद्र था। इसे पान चाइना फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फॉर नेशनल सेल्वेशन कहा जाता है। कई विख्यात वकीलों, पत्रकारों तथा आचार्यों ने, जो इस संगठन के निदेशक थे, गृह युद्ध को समाप्त कर जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा संघर्ष का आह्वान किया। यह आह्वान सीसीपी और कोमिंतर्न के संयुक्त मोर्चे की स्थापना की अपील के अनुरूप ही था। पूर्व के शहरों में संघ तथा साम्यवादियों ने मिलकर कार्य किया। जापानी आक्रमण के पूर्व साम्यवादियों का प्रभाव दक्षिणी प्रदेशों तक ही सीमित था, जहाँ कियांगसी तथा अन्य साम्यवादी चौकियाँ स्थित थी। परंतु उत्तरी चीन में जापानी आक्रमणों के फलस्वरूप जो जापान विरोधी मानसिकता पनपी, उसने साम्यवादियों को उत्तरी चीन में भी काफी लोकप्रिय बनने में मदद की। इस बीच 12 दिसंबर 1936 ईस्वी को सियान की घटना घटी, जिसमें चियांग चिये श्रॉ को उसकी ही सेना ने बंदी बनाकर अन्य शक्तियों से समझौते के लिए मजबूर किया। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे संयुक्त मोर्चा की स्थापना हुई। इसने चीन की सभी राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों को पुनः एकीकृत किया। संयुक्त सेनाओं ने शंघाई में जापानी सेना का कड़ा मुकाबला किया, पर सैन्य सामग्रियों के स्तर में अत्यधिक अंतर होने के कारण चीनी देशभक्तों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। परंतु राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध की बड़ी देन यह थी कि इसने देशभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित करने और फैलाने में भारी सफलता पाई। इस युद्ध के बारे में लिखने वाले सब लोगों ने यह इंगित किया कि 1937 से 1938 ईस्वी के जारों ने चीन में जादू का काम किया। द विंटर ऑफ 1937 टू 1938 वर्कड एज ए मिरेकल इन चाइना। फलस्वरूप अप्रैल 1938 ईस्वी में जापान के इतिहास में पहली बार उसकी सेना की चीन में हार हुई। परंतु अप्रैल 1938 ईस्वी के पश्चात एक एक करके चीन के विभिन्न प्रदेश जापान की आर्थिक और सैन्य मजबूती के समक्ष घुटने टेकने लगे। ऐसी स्थिति में चियांग चियेसरा की मान्यता थी कि चीन के समक्ष एक ही मार्ग शेष था, और वह था जापान से सीधी टक्कर से तब तक बचे रहना जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय मदद न पहुंचाया जाए। पर साम्यवादी चाहते थे कि जापानियों के विरुद्ध जनता का संघर्ष जारी रहे। इस मतभेद से ही द्वितीय संयुक्त मोर्चे के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चियांग चियेसरा ने महसूस किया कि एनआन में जापानियों के विरुद्ध छापामार युद्ध में लोगों को दक्ष बनाने तथा उन्हें संगठित करने के दौरान साम्यवादी लगातार जनता का समर्थन जीतते आ रहे हैं। चूंकि सीसीपी की लोकप्रियता की वृद्धि से कुओमिंतांग का अहित होता था, अतः चियांग ने पहले हुनान तथा बाद में हुपेई और हपेई में साम्यवादियों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। नवंबर 1939 ईस्वी में उसकी सेनाओं ने यान आन चौकी के दक्षिणी हिस्से के कुछ भाग को जीत लिया। जनवरी 1941 ईस्वी में साम्यवादियों के मुख्यालय पर आक्रमण हुआ और उनके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया या मार डाला गया। यह सब उस संगठन सीसीपी के खिलाफ हो रहा था जो जापान जैसे भयावह दुश्मन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ऐसी संगठन के विरुद्ध कुओमिंतांग के दमनकारी रवैये ने देशभक्त समूहों को सीसीपी के निकट लाने में बड़ी भूमिका निभाई। चालमर जॉनसन की मान्यता है कि साम्यवादियों की विजय का यह था कि जनता तथा किसान उन्हें राष्ट्रभक्त मानते थे, परंतु अधिक मान्य तर्क यह है कि साम्यवादियों की विजय इसलिए हुई क्योंकि किसानों को यह विश्वास हो गया था कि जापान पर साम्यवादियों की विजय चीन को सच्ची प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर ले जाएगी, जिसका परिचय उन्हें साम्यवादियों द्वारा प्रभावित व्यवस्था और नियंत्रित क्षेत्रों में प्रशासन से मिल चुका था। इस विश्वास के कारण किसानों ने हर कदम पर साम्यवादियों की मदद की और उनकी सैनिक गतिविधियों में भी भाग लिया। 1946 ईस्वी में जब साम्यवादियों और कुओमिंतांग के बीच निर्णायक युद्ध शुरू हुए तो किसानों और साम्यवादियों के बीच जापान विरोधी युद्ध के दौरान स्थापित नजदीकी ने निर्णायक भूमिका निभाई, परंतु सीसीपी की सफलता को भाग्यवश उत्पन्न परिस्थितियों की देन बताने के क्रम में चाल्मर जॉनसन ने सीसीपी तथा कुओमिंतांग सहित अन्य दलों के दौरान बीच के सैद्धांतिक अंतरों को नजरअंदाज कर दिया। ये अंतर सैद्धांतिक स्तर पर ही नहीं थे बल्कि सीसीपी की सामाजिक आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में भी स्पष्ट रूप से झलकते थे। अतः सीसीपी की सफलता के कारणों की व्याख्या करते समय माओ तथा उनके सहयोगियों द्वारा निर्धारित किसान कार्यक्रमों को उचित अहमियत दी जानी चाहिए। वास्तव में साम्यवादियों की विजय का सबसे बड़ा कारण यही किसान कार्यक्रम थे, जिनके कारण सीसीपी स्वयं को जनता की सरकार और सेना के रूप में स्थापित कर पाई। जॉनसन ने इस तथ्य की भी अवहेलना कर दी कि माओ की क्रांति की योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था किसान का जागरण तथा उन नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जिनके द्वारा यह संभव हो सके। अतः सीसीपी की सफलता जापानी आक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की देन होने के बजाय अपनी नीतियों, सिद्धांत, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की देन अधिक थी।